हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 467 आदित्य को वहाँ बंगले से गए हुए 2 से 3 घंटे बीत चुके थे और अब तक रात के खाने का वक्त हो गया था, तो सुनैना ने भवानी काका और वहाँ के बाकी नौकरों से बात करके सभी के लिए डिनर बनाने को बोल दिया। सुनैना को ज़्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन नैना ठीक ठाक खाना बना लेती थी, इसीलिए वो किचन में चली गई और अक्षत अपने असिस्टेंट अजय से कॉल पर बात करने लगा। स्वीटी और सुनैना वहाँ पर बैठकर आपस में बात कर रही थीं। तभी स्वीटी ने सुनैना को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसमें उसे एक पर्सनल सेलिब्रिटी मॉडल दिया जाएगा, जिसके लिए स्वीटी को स्पेशल कपड़े डिज़ाइन करने होंगे। अगर वो पसंद आया और टॉप 5 डिज़ाइनर ड्रेस में आता है तो फिर स्वीटी नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाएगी और फाइनल्स को भी क्लियर कर लेगी। स्वीटी की बात सुनकर सुनैना थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बोली, अरे वाह, तो फिर तुम्हारा ये राउंड कब है? तुम मुझे अब बता रही हो इस बारे में? वैसे तुम्हें पता चला अभी तक तुम्हें कौन मिलेगा? क्या पता तुम्हें अक्षत सर ही मिल जाएं? स्वीटी उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, शायद कोई मॉडल या फिर हो सकता है कोई नया एक्टर मिल जाए जिनकी 1-2 फिल्में ही आई हैं। बाकी अभी इतना ज़्यादा इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन मैं अपने ड्रेस पर काम कर रही हूँ, मेल या फीमेल कोई भी मिल सकता है, तो मुझे दोनों के 1-1 फाइनल डिज़ाइन प्रिपेयर करने होंगे और इसके अलावा 1 या 2 एक्स्ट्रा में भी रखने पड़ेंगे। स्वीटी की ये बात सुनकर सुनैना की सारी एक्साइटमेंट एकदम ही कम हो गई। उसके बाद स्वीटी को भी उसकी फ्रेंड का कॉल आया और लैपटॉप पर वीडियो कॉल करके वो अपनी फ्रेंड से बाकी के डिज़ाइन और वो सारी चीज़ें डिस्कस करने लगी। सुनैना वहाँ पर अकेली बैठी हुई बोर हो रही थी, उसने स्वीटी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और अक्षत भी जब तक नैना के पीछे ही चला गया था तो वो उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने के लिए नहीं गई। वे तीनों ही वहाँ पर रुके हुए थे, आदित्य के वापस आने का वेट कर रहे थे क्योंकि आदित्य उन लोगों को वहाँ पर रुकने के लिए बोलकर गया था। बाकी सब तो फिलहाल अभी आदित्य के बारे में उतना नहीं सोच रहे थे क्योंकि सभी अपने अपने किसी न किसी काम में बिजी थे, लेकिन सुनैना ही इस वक्त एकदम फालतू थी। उसके पास ऐसा कोई काम नहीं था और नैना वहाँ पर थी तो वो किसी से कॉल पर भी बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो काफ़ी बोर हो रही थी। इसीलिए वो स्वीटी के सामने थोड़ी देर तक बैठी रही, लेकिन स्वीटी अभी अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करने में काफ़ी बिजी थी। तो फिर सुनैना वहाँ से उठी और वो ऊपर की तरफ गई जहाँ पर उसका और आदित्य का कमरा था, साथ ही और भी कई सारे कमरे थे। उस घर से सुनैना की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी क्योंकि वो अपनी शादी के लिए यहीं पर तैयार हुई थी और उसकी शादी भी इसी घर से हुई थी। इसके अलावा वो कई बार यहाँ पर आ चुकी थी और अभी कुछ दिनों पहले उन दोनों ने अपनी एनिवर्सरी भी यहीं पर ही सेलिब्रेट की थी। उस पूरे घर को देखते हुए सुनैना को वो सब कुछ याद आ रहा था और अभी सुनैना को एक कमरे का दरवाज़ा देखकर कुछ और भी याद आया और उसने एकदम ही उसे कमरे का हैंडल घुमाते हुए वो कमरा खोला और उसके अंदर आ गई। पिछली जितनी भी बार वो आदित्य के साथ वहाँ पर उस बंगले में आई थी, आदित्य हमेशा ही उसे इन सारे कमरों में जाने के लिए मना करता था, लेकिन एक बार वो खुद ही उसे वहाँ पर लेकर आया था और तभी सुनैना ने उसके पापा की फ़ोटो देखी थी और आदित्य ने उनके बारे में सुनैना को बताया था। लेकिन सुनैना को याद आया कि जब भी वो आदित्य से उसकी माँ के बारे में पूछती तो वो हमेशा ही उस बात को टाल देता और सीधी तरह से उसे कुछ नहीं बताता। वो कमरा देखकर सुनैना को वो सारी बातें एकदम ही याद आ गईं और वो वहाँ पर अंदर आ गई। उसने सोचा कि शायद उसे यहाँ पर से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि उसे कुछ पता चले, और ये सोचते हुए वो वहाँ पर पूरे कमरे में इधर उधर कुछ ना कुछ तो ढूंढने लगी। मुझे लगता है कि आदित्य के मॉम डैड का बेडरूम होगा या फिर शायद उसके दादा का, क्योंकि किसी भी औरत का तो कोई सामान दिख नहीं रहा है यहाँ पर। इधर उधर कुछ ढूंढती हुई सुनैना अपने आप से ही बात करती हुई बोली। वो वहाँ पर रखी हुई सारी पुरानी फाइलें, किताबें और जितना भी सामान था वो सब बहुत ही धूल भरा था। सुनैना ने जैसे ही एक सफ़ेद चादर खींचकर हटाई, वैसे ही वहाँ पूरे कमरे में एकदम धूल उड़ गई और उसे थोड़ी सी खांसी आने लगी। सुनैना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने देखा कि वहाँ पर ज़मीन में एक टूटा हुआ सा फोटो फ्रेम उल्टा पड़ा हुआ था और सुनैना को वो देखने की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई। सुनैना हल्का सा झुककर वो फोटो फ्रेम उठाने लगी और फिर उसने जैसे ही उसे फोटो फ्रेम को देखा तो वो बहुत ही कन्फ्यूजन भरी नज़रों से सोचती हुई उसे तरफ ही देखती रही और उसके बाद फिर उसने आगे और भी कुछ ढूंढना जारी रखा। दूसरी तरफ आदित्य के इस तरह से वहाँ पर मनस्वी के होटल में आने की उम्मीद उनमें से किसी को भी नहीं थी और वो भी इस तरह से बिना बुलाए और बिना बताए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था और मनस्वी ने इस तरह इतने सारे लोगों, आदित्य और अपने सिक्योरिटी गार्ड बॉडीगार्ड के सामने उसे कोई भी बात करना ठीक नहीं समझा, इसीलिए वो उसे लेकर अपने होटल के VIP रूम में आ गई। उसी रूम में अक्सर वो इस तरह की इंपॉर्टेंट और सीक्रेट प्राइवेट मीटिंग ही करती थी, इसीलिए सारे बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड को उसने वहाँ पर ही रुकने के लिए बोला। आदित्य ने भी सिर्फ नदीम को ही अपने साथ रूम के अंदर लिया और बाकी सारे लोगों को उसने वहाँ पर बाहर ही रुकने को बोलकर अनय और मनस्वी के साथ मीटिंग के लिए उनके VIP रूम के अंदर चला गया। अंकित वहाँ पर बाहर ही रुक गया, लेकिन वो इस तरह से आदित्य के वहाँ पर आने और फिर मनस्वी का उसके साथ इस तरह इतना सीरियस और फॉर्मल बिहेव करता हुआ देखकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया। उसे समझ नहीं आया और आगे उनके बीच क्या बात होने वाली है ये भी वो पता नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान हो गया और बहुत ही बेचैनी से रूम के बाहर खड़ा होकर इधर उधर देखा हुआ वो इस बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ उस रूम के अंदर आते ही अनय बोला, क्या हुआ यार आदि, आज तू ऐसे अचानक यहाँ पर बिना बताए, और तू ठीक भी नहीं लग रहा, तुझे ये इतनी सारी चोटें कैसे लगी हैं चेहरे पर, तो ठीक तो है ना। अनय ने उसकी तरफ गौर करते हुए देखा तो उसे हाथ पैर और आदित्य के चेहरे पर कुछ स्क्रैचेस नजर आए जो कि किसी चोट के लग रहे थे, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान होता हुआ उससे